ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और उड़ान के आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तरी ईरान से लाए गए 110 भारतीय छात्र नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी ये एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी हम लोग यहां से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं।
ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। आकाशवाणी समाचार ने ईरान से वापस आए कुछ छात्रों से बातचीत की।
मेरा नाम तामीरुल इस्लाम है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, पर्टिकुलरली फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स के, उन्हें बहुत आगे खदमत हमारी की और हमें यहाँ तक फास्ट ट्रैक बेसिस पे लाया है।
मेरा नाम मरियम रोज है, मैं दिल्ली से हूँ। इंडियन एम्बेसी ने बहुत स्मूथली हमें निकाला वहाँ से, हम बहुत थैंकफुल है उनके, इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने हमें निकाला, इवैक्यूएट किया।
इस बीच इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष सातवें दिन भी जारी है। ईरान की मिसाइलों ने मध्य और दक्षिणी इसराइल में कई स्थानों पर भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि इसराइली बलों ने ईरान के अराक में परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। दक्षिणी इसराइल के एक अस्पताल और तेल अवीव के पास दो शहरों में ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया है। इस बीच ईरान ने कहा है कि उसके मिसाइल हमले का मुख्य लक्ष्य दक्षिणी इसराइल का अस्पताल नहीं बल्कि उसके पास का सैन्य और खुफिया अड्डा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले क्रोएशिया में जागरेब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ व्यापक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की आशा व्यक्त की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जोरदार वकालत की और कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता।
EU के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है।
चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक गुजरात में विसावदर सीट पर 47% से अधिक और कड़ी सीट पर लगभग 46% मतदान हुआ है। वहीं केरल की नीलांबुर सीट पर करीब 59% से अधिक मतदान की खबर है और पंजाब की लुधियाना विधानसभा सीट पर 41% से अधिक मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर लगभग 60% से अधिक मतदान हुआ है। सभी 5 सीटों के लिए मतगणना सोमवार को होगी। सरकार देश भर में जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि उनके मंत्रालय ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। ये विशेष साक्षात्कार 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर आज रात्रि 9:30 बजे से प्रसारित होगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है। दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के नए संस्करण में IIT दिल्ली की रैंकिंग 123वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 का स्वागत किया है और इसे वैश्विक शिक्षा तथा अनुसंधान में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण बताया है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में पुरुषों के पूल सी मुकाबलों में महाराष्ट्र ने मणिपुर के खिलाफ 7-1 से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।